आचार्येभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार से श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पांचवें अध्याय की चर्चा चल रही है, नित्यानंद बलराम की महिमाओं का वर्णन। सर्वप्रथम इस अध्याय में श्रील कृष्णदास कविराज बलराम तत्व का वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण और बलराम दो अलग भगवान नहीं है, बल्कि वो एक ही तत्व है, एक ही परम सत्य है, जो कि दो शरीर में प्रकट हुए हैं। दोनों में अंतर इतना ही है कि कृष्ण सांवले हैं और बलराम गोरे हैं। और कविराज गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी बलराम हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है। बलराम श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। गोलोक वृंदावन में तो हर एक दृष्टि से श्री कृष्ण की सेवा तो करते ही हैं, परंतु गोलोक वृंदावन के बाहर भी वो अनेक रूप धारण करते हैं भगवान की सेवा के लिए। बलराम भी भगवान है, परंतु वो सेवक भगवान है और श्री कृष्ण सेव्य भगवान है। सेव्य मतलब जिनकी सेवा की जाती है और सेवक मतलब जो सेवा करते हैं। दोनों भगवान हैं, कृष्ण और बलराम, परंतु कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट हुए हैं सेवक बनने के लिए, अपनी ही निजी सेवा करने के लिए। तो गोकुल वृंदावन के अलावा बलराम जी अन्य पांच रूप धारण करते हैं भगवान की सेवा के लिए। कौन से हैं ये पांच रूप, पिछले बार से जरा बताइएगा, बिना देखे हुए बताइए। हाँ बोलिए, माइक यहाँ पर है, पीछे दे दीजिए। कौन से पांच रूपों में बलराम जी अपने आप को विस्तार करते हैं?
महासंकर्षण, कारणदक्षाय विष्णु,
ठीक है,
गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु एंड शेष।
और शेष, तो इनमें से कौन से चार रूप हैं जो सृष्टि लीला में शामिल हैं, या कौन नहीं है इनमें से?
शेष।
शेष, शेष क्या करते हैं? हाँ बताइए।
शैया बनते हैं जब विष्णु रूप के।
हाँ, लेकिन किस प्रकार की सेवा करते हैं? भगवान की निजी सेवा करते हैं, पर्सनल सर्विस। और अन्य चार जो हैं वो सृष्टि लीला में शामिल होते हैं। और विशेष करके भौतिक सृष्टि का संबंध किन तीनों से है? तीन पुरुष अवतार, तीन विष्णु, ठीक है ना, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। इन तीनों का संबंध भौतिक सृष्टि से है और इन तीनों के उद्गम है महासंकर्षण, और महासंकर्षण के उद्गम है बलराम जी, बलराम जी के उद्गम है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के उद्गम है कौन है? उनके कोई उद्गम नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो फिर ये पांच रूपों में बलराम जी सेवा करते हैं। फिर मंगलाचरण के सातवें श्लोक के संक्षिप्त रूप में हम चर्चा कर चुके हैं, और इस श्लोक को समझाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी और चार श्लोक बतलाते हैं। तो मंगलाचरण का आठवां श्लोक जो है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद राम के चरणों में वंदन करते हैं, जो कि स्वयं संकर्षण है, जो कि चतुर्व्यूह के बीच में खड़े हैं, वो सर्व ऐश्वर्यों से युक्त हैं और वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। इसके बाद हम ये चर्चा कर रहे थे कि इस भौतिक सृष्टि के परे पर व्योम है, ये है अपर व्योम, ये भौतिक सृष्टि है, ये साधारण भौतिक आकाश है, इसके परे पर व्योम है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत के तीन भाग हैं, कौन से तीन भाग हैं बताइएगा, बोलिए।
ब्रज गोकुल
ना, आध्यात्मिक जगत के कौन से तीन भाग, वैकुंठ लोक, गोलोक नहीं,
कृष्ण लोक,
कृष्ण लोक नहीं, वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक, ब्रह्म ज्योति, ठीक है, ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैकुंठ लोक और कृष्ण लोक दोनों ही लोक हैं, ग्रह हैं आध्यात्मिक जगत के। जितने भी सारे लोक वैकुंठ जगत में हैं, उनको वैकुंठ लोक कहते हैं, परंतु उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उसको कृष्ण लोक कहते हैं। तो कृष्ण लोक को कैसे विभाजित किया जाता है बताइए, फर्क है, पिछली बार बताइए क्या बताया था, कृष्ण लोक के कौन से तीन भाग हैं?
कृष्ण लोक के तीन भाग द्वारका, मथुरा, गोकुल।
द्वारका, मथुरा और गोकुल, तो गोकुल के कितने और कोई थोड़े नाम बताइए बिना देखे हुए, देखना नहीं है मुझे।
गोकुल के ब्रज, गोलोक, श्वेतद्वीप,
वृंदावन,
गोलोक, वृंदावन,
वृंदावन, ब्रज, गोलोक, श्वेतद्वीप, ये सब गोकुल के अन्य नाम है। तो है एक ही, चाहे आप उसे गोकुल कहिए, गोलोक कहिए, वृंदावन कहिए, गोलोक वृंदावन कहिए, ये कृष्ण लोक का एक भाग है, हिस्सा है। अन्य दो कौन से हैं? द्वारका और मथुरा। और श्री कृष्ण स्वयं भगवान अवतारी श्री कृष्ण कहाँ निवास करते हैं? गोकुल में, इस गोकुल में या गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। और उसका आकार कैसे है इस धाम का बताइए,
एक हजार पंखुड़ी वाली कमल पुष्प के समान,
एक हजार पंखुड़ियों वाली कमल पुष्प के समान है। और श्री कृष्ण का निवास स्थान इस कमल पुष्प में कहाँ है?
के बीच में,
बिल्कुल बीच में है। और वहाँ कृष्ण अकेले रहते हैं ना, नहीं, कौन रहते हैं उनके साथ?
नंद महाराज, यशोदा,
उनके जितने भी पार्षद हैं, नित्य पार्षद, वो उनके साथ में रहते हैं, जैसे नंद महाराज, माता यशोदा आदि, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण उसी श्री गोकुल को या गोलोक को या व्रज या वृंदावन को प्रकट कराते हैं यहाँ इस भौतिक जगत के भीतर। और वो कहाँ है? वही व्रज, वही गोकुल कहाँ है इस भौतिक जगत के भीतर? भौम वृंदावन कहाँ है वो?
यही पे, जहाँ बैठे।
क्यों एक आप थोड़े हिचकिचाकर बोल रहे हैं, संशय क्यों है? निष्ठा से बोलना चाहिए ना कि यही है, हम उसी ब्रज में बैठे हैं, बैठे हैं ना? तो दोनों में कोई अंतर है?
नहीं,
बिल्कुल नहीं। वहां भी रिक्शा है, रिक्शा और रेलगाड़ी वगैरह सब है। ये तो बाहरी वृंदावन है, परंतु मूल वृंदावन, चाहे वो भौम वृंदावन हो या परव्योम वृंदावन हो, दोनों बिल्कुल एक समान है। भगवान अपने धाम को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हो सकता है हमारे कमरे के अंदर से सामान हम ले जाएं, घर में जो सामान है दूसरी जगह में ले जाएं, परंतु घर का घर उठाकर तो नहीं ले जा सकते, या शहर का शहर ले साथ में नहीं ले जा सकते। लेकिन भगवान की शक्ति अचिंत्य है, तो जब वो यहाँ भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तो अपने गोकुल धाम को, गोकुल वृंदावन को पूरी तरह से यहाँ प्रकट कराते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस गोकुल धाम में, गोलोक वृंदावन में और उस गोलोक में कोई अंतर है, या ये निम्न श्रेणी का धाम है और वो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। दोनों बिल्कुल बराबर है और ये बिल्कुल आध्यात्मिक है। तो हमें आध्यात्मिक क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्या चाहिए इस भौम वृंदावन को उस परव्योम वृंदावन से एक या अभिन्न समझने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? दिव्य दृष्टि वो कैसे प्राप्त होती है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होके, जो चेतो दर्पण मार्जन, भगवान का नाम उच्चारण मात्र करने से और अन्य भक्ति की सेवाएं करने से जब चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, फिर उन प्रेम नेत्रों से हम इस भौम वृंदावन को उस परव्योम वृंदावन से अभिन्न जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चर्चा हुई थी। और आगे कविराज गोस्वामी गोलोक वृंदावन का वर्णन संक्षेप में करते हैं कि वो चिंतामणि धाम है, और ब्रह्म संहिता का वो श्लोक प्रमाण के रूप में रखते हैं। चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष, ये श्लोक आप जानते हैं ना? और वृंदावन में क्या होता है इसका वर्णन करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, बहुत लंबा तात्पर्य है, करीब करीब कितने पन्ने हो गए देखते हैं, 8-10 पन्ने हैं इस एक श्लोक के ऊपर तात्पर्य दे रहे हैं। और इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वैकुंठ जगत ऐसे होता है जहां किसी चीज का विनाश नहीं होता है। ये भौतिक जगत में देखा जाता है कि हर एक चीज का जन्म होता है, उसे निर्माण किया जाना पड़ता है, उसके बाद उसका पालन होता है, फिर अंत में संहार होता ही होता है। तो जो सृष्टि के सृजन का कार्य है, किसी भी चीज की उत्पत्ति अगर करनी हो तो तीन गुणों में से कौन से गुण का प्रयोग होता है, या कौन से गुण की आवश्यकता होती है, जरा बताइए कौन से तीन गुण है ये बताइए। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। ये भौतिक सृष्टि में ये तीन गुण हैं। ये भौतिक सृष्टि इन तीन गुणों से बनाया हुआ है, बना हुआ है। तो किसी चीज की उत्पत्ति करने के लिए, चाहे वो कोई शिल्पकार है जो कोई चित्र बनाना चाहता है, कोई या कोई किसी भी चीज, एक निर्माण करना है कुछ इमारत का या कुछ भी करना हो, तो कौन से गुण का प्रयोग होता है? रजोगुण। किसी चीज का विनाश होना है तो कौन से गुण का प्रयोग होता है? तमोगुण। किसी चीज को स्थायी रूप में बनाए रखना पड़ता है तो कौन से गुण का प्रयोग होता है? सत्वगुण। तो यहाँ पर क्या किसी चीज को स्थायी रूप से हम बनाए रख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? यहाँ पे इस भौतिक जगत में चीजें शाश्वत रूप से क्यों नहीं रहती हैं? बताइए। हाँ, तमोगुण, क्योंकि यहाँ पर तमोगुण का प्रभाव है। तो जहाँ तमोगुण है, चीजों का विनाश होना ही होना है। और यहां रजोगुण भी है ना, तो रजोगुण का मतलब क्या है, चीजों की उत्पत्ति भी होनी है। तो यहां हालांकि सत्वगुण है, फिर भी सत्वगुण रजो और तमो से मिश्रित होने के कारण कोई भी चीज यहां स्थायी रूप से नहीं रह सकता है। विनाश होगा, विनाश होने के बाद फिर से उसकी उत्पत्ति होगी। परंतु आध्यात्मिक जगत में न केवल सत्वगुण है, जो कि यहां का सत्वगुण तो भौतिक है, लेकिन वहां शुद्ध सत्वगुण है। और वहां पर न रजोगुण है न तमोगुण है, कोई भौतिक गुणों का प्रभाव कदाचित भी नहीं होता, तनिक भी नहीं होता। इसलिए वहां किसी भी चीज का नाश नहीं होता, न किसी चीज की उत्पत्ति होती है, स्थायी रूप से सब वहां पर विद्यमान है। यह है वैकुंठ जगत, चाहे कोई वैकुंठ लोक में हो या कृष्ण लोक में हो। किसी चीज का जन्म नहीं होता, न किसी का विनाश होता है। आत्मा के साथ भी तो ऐसा ही है ना, भगवद गीता का तो यह प्राथमिक ज्ञान है कि आत्मा का जन्म नहीं है ना आत्मा का मरण है, आप सब जानते हैं। ये गीता के दूसरे अध्याय में भगवान तो कहते ही हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक जगत और उस आध्यात्मिक जगत में बहुत अंतर है, और अंतर ये है मूल रूप से। तो इस वैकुंठ जगत के अंदर क्या होता है, ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया था, पहले तो वैकुंठ लोकों का दर्शन दिया, उन वैकुंठ लोकों में क्या चल रहा है, वैकुंठ लोक के निवासी कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, आभूषण कैसे हैं, सब चीजों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ये दर्शन दिलाया, और बाद में उनको कृष्ण लोक का दर्शन भी दिलाया। कृष्ण लोक में द्वारका, मथुरा और गोलोक, गोलोक का दर्शन भी ब्रह्मा जी कर पाए। आगे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी वैकुंठ निवासियों का वर्णन करते हैं कि यहाँ तो हम काले और गोरे में भेद करते हैं, लेकिन वहां पर सभी लोग, सभी जितने भी निवासी हैं, सांवले रंग के हैं, लेकिन उनका जो सांवला रंग है इस दुनिया के काले रंग के समान नहीं है। यहाँ जो सांवला रंग पाया जाता है उस प्रकार का नहीं है, वो बहुत ही प्रकाशमान है, तेजस्वी है, सुंदर है। तो काला भी सुंदर होता है, अंग्रेजी में कहावत है ब्लैक इज ब्यूटीफुल। यहाँ भारत में सभी लोग सब चीज काला पसंद नहीं करते हैं, सब गोरा होना चाहते हैं, है ना? लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ, वहां जो काला है, श्याम रंग है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण भी तो सांवले ही हैं, और वहां के निवासी बहुत दिखने में सुंदर हैं, और उनके वस्त्र भी पीतांबर होते हैं, मतलब बिजली के समान रंग होता है, बहुत ही सुंदर। और उनके चतुर्भुज होते हैं वैकुंठ लोकों में, कृष्ण लोक में नहीं, वैकुंठ लोकों में चतुर्भुज रूप होते हैं, और अपने साथियों के साथ में वो इधर उधर विमानों में घूमते हैं। हालांकि विमानों की आवश्यकता नहीं है वहां वैकुंठ जगत में, लेकिन फिर भी विमानों में सवार होकर वो घूमते हैं, कहीं जहां चाहे वो जा सकते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहां के जो विमान हैं वो यहां भौतिक जगत के विमानों की तरह नहीं है। यहां भौतिक विमान जब उड़ते हैं तो क्या होता है, इतनी जोर से आवाज, और जहां से हवाई अड्डा होता है वहां तो कितना आवाज होता है, जो पास में रहते हैं तो उनके लिए बहुत तकलीफ होती है, हवाई जहाजों की उड़ने की आवाज, लैंडिंग और टेक ऑफ करने की आवाज बहुत ज्यादा है, और कभी कभी बम के अंदर बम का विस्फोट हो जाता है, कभी हवाई जहाज जो है नीचे गिर के क्रैश हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, दुर्घटनाएं कई हो जाती हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन विमानों में वैकुंठवासी यात्रा करते हैं उनमें ऐसे कोई दोष नहीं है, बस उनके मन की इच्छा से ये चलते हैं, वो इच्छा करते हैं कि मुझे उस लोक में जाना है या इस स्थान से उस स्थान में जाना है, बस वैकुंठ विमान आ गया और उनको बिठा लिया और बस उड़ते वैकुंठ आकाश से परव्योम से उड़ते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जब श्री रामचंद्र यहाँ पर थे त्रेता युग में, उस समय भी देवलोक से एक पुष्पक विमान आया था जो कुबेर के पास था, कुबेर से छीन लिया था रावण ने, क्योंकि कुबेर के भाई थे रावण, पिता एक ही थे दोनों के, कुबेर के और रावण के। नाम पता है उनके पिता का? हाँ, विश्रवा। तो क्या कुबेर से छीन लिया और जब रावण का वध हो गया तो पुष्पक विमान श्री रामचंद्र जी के पास आया और वो अयोध्या लौट के आए पुष्पक विमान में। और पुष्पक विमान ऐसे था कि केवल राम के विचार करने मात्र से उनके सामने आके हाजिर हो गया, सेवा में उपस्थित। क्या आदेश है, राम को बुलाना नहीं पड़ा, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं करना पड़ा, सीधे आ गई विमान, सबको बिठाकर, सारे वानर सेना को एक विमान में बिठाकर आराम से ले गए। तो यहाँ इस पृथ्वी लोक के ऊपर भी या इस भौतिक जगत के अंदर भी हम देखते हैं ऐसे विमाने हैं, तो वैकुंठ लोक में क्यों नहीं? तो ऐसे बहुत ही सुंदर है, वहां भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, और वहां भी पारिवारिक जीवन है, पति पत्नी होते हैं वहां, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन फर्क इतना ही है कि कोई यौन संबंध नहीं होता, वहां सब जीवन बड़ा शुद्ध होता है। और वहां पे अनेक लक्ष्मी देवियां हैं जो भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। इस प्रकार से ये लंबा तात्पर्य है, आप हम आपको प्रोत्साहित करना चाहेंगे इस तात्पर्य को पढ़ने के लिए, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। और इस अध्याय में ऐसे कई जगह हैं जहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत लंबे लंबे तात्पर्य दिए, 8-10 पन्नों के तात्पर्य, तो अवश्य हमें इनको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इस बात की भी चर्चा की है कि योगी जो होते हैं वो अपने योगाभ्यास के बल पर अपने आत्मा को शरीर से बाहर निकाल के अपने ब्रह्मरंध्र से सर के ऊपर जो एक छोटी सी छोटा सा छेद होता है उसमें से वो निकाल लेते हैं मृत्यु के समय, और जहाँ चाहें वो चले जा सकते हैं। तो योगी लोग वैकुंठ लोक में भी जा सकते हैं। तो भक्तों को ऐसे कोई सहज समय की वगैरह प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, केवल अपने भक्ति के बल पे वो भगवान के धाम में भगवान की कृपा से पहुंच सकते हैं। तो फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण इससे पहले भी कुछ होगा ना, इससे पहले भी कोई चार्ज है, ये बाद वाला चार्ज है। अच्छा ठीक है, आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बस ठीक है रहने दीजिए। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि किस प्रकार से भगवान का विस्तार होता है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण जो कि गोकुल वृंदावन में निवास करते हैं, वो अपने आप को बलराम के रूप में विस्तार करते हैं, इस बात की कुछ चर्चा हम कर चुके हैं। और दोनों कृष्ण और बलराम, मूल कृष्ण और मूल बलराम, गोलोक वृंदावन में या गोकुल में रहते हैं। और द्वारका और मथुरा में कौन रहते हैं? द्वारका, मथुरा और गोकुल तीनों कृष्ण लोक के भाग हैं। तो कृष्ण बलराम गोकुल में रहते हैं, वृंदावन में, गोलोक में रहते हैं, व्रज में रहते हैं, तो द्वारका मथुरा में कौन रहते हैं बताइए? वासुदेव कृष्ण रहते हैं जो कृष्ण के विस्तार हैं। और बलराम रहते हैं किस रूप में रहते हैं? संकर्षण, वो भी संकर्षण कहलाते हैं, बलदेव। तो कृष्ण बलराम मूल रूप से गोकुल में निवास करते हैं, परंतु द्वारका और मथुरा में उनका पहला चतुर्व्यूह विस्तार है, और जिसके बारे में यहाँ पे बतलाया हुआ है कि पहला चतुर्व्यूह चतुर्व्यूह मतलब चार रूप हैं जो उनके विस्तार हैं। द्वारका मथुरा में उनके नाम क्या हैं जरा पढ़िएगा।
कृष्ण का पहला विस्तार
केवल चतुर्व्यूह चतुर्व्यूह के नाम
में वासुदेव संकर्षण प्रद्युमन अनिरुद्ध।
हाँ प्रद्युमन, तो इन चार नामों को आपको याद करना है। आप में से कितने भक्तों ने ये चार नाम सुने नहीं हैं इस श्रृंखला में वासुदेव संकर्षण प्रद्युमन अनिरुद्ध, सबने सुने हैं ना चतुर्व्यूह। ये चतुर्व्यूह हैं, तो ये पहले चतुर्व्यूह कृष्ण और बलराम के बाद ये सबसे पहले विस्तार है। और ये कहाँ निवास करते हैं? द्वारका और मथुरा में। कहाँ द्वारका मथुरा कहाँ है? कृष्ण लोक में। तो कृष्ण लोक में ये भगवान के इतने रूप पाए जाते हैं। तो श्री कृष्ण चाहे गोलोक में हो या द्वारका में हो वो कृष्ण के रूप में ही रहते हैं। जब भगवान द्वारका में रहते थे उनका नाम भी कृष्ण ही था, मथुरा में रहते थे तब भी उनको कृष्ण ही पुकारते थे, तो कृष्ण ही हैं। परंतु वृंदावन कृष्ण के विस्तार हैं। तो कृष्ण भगवान कृष्ण के रूप में केवल कृष्ण लोक में लीला करते हैं। तो फिर अन्य लोकों में क्या करते हैं? वैकुंठ जगत में किस रूप में वो लीला करते हैं? आइए इसको घुमाइएगा। हाँ पढ़िएगा।
केवल इन्हीं तीन स्थानों द्वारका मथुरा तथा गोकुल में लीला में भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। परव्योम के वैकुंठ लोक में भगवान नारायण रूप में प्रकट होते हैं और नाना प्रकार से लीलाएं करते हैं।
तो इसका मतलब है कृष्ण भगवान कृष्ण के रूप में केवल कृष्ण लोक में रहते हैं, वहां पर लीला करते हैं, चाहे वो गोकुल में हो मथुरा में हो या द्वारका में हो। और वही श्री कृष्ण जब अन्य वैकुंठ लोकों में लीला करते हैं तो वो नारायण के रूप में करते हैं। नारायण भी वही श्री कृष्ण हैं, परंतु उनके विस्तार हैं और रूप में उनका अंतर है। ठीक है, अभी अभी क्या बताया जरा आप कोई दोहराइए इस बात को। कौन दोहराएंगे? हाँ बोलिए कोई। हाँ माइक।
कृष्ण अपने संगियों के साथ लीला केवल कृष्ण लोक में ही करते हैं, जैसे कृष्ण लोक के तीन भाग गोलोक मथुरा और द्वारका, और लेकिन अन्य वैकुंठ लोकों में कृष्ण नारायण के रूप में निवास करते हैं।
तो नारायण और कृष्ण में अंतर क्या है? है वही कृष्ण या अलग है?
वही कृष्ण,
वही कृष्ण है, केवल
रूप का अंतर
है, भाव का भी अंतर है, लीला का भी अंतर है। हाँ जी घुमाइएगा। अच्छा जी लिख लिया आप सबने और लिखना चाहते हैं? ठीक है दो मिनट लिख लीजिए, फिर से पढ़िएगा ताकि सभी लिख सकें। धीरे से पढ़िए।
केवल इन्हीं तीन स्थानों द्वारका मथुरा तथा गोकुल में लीला में भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। परव्योम के वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण रूप में प्रकट होते हैं और नाना प्रकार से लीलाएं करते हैं।
ठीक है, अच्छा घुमाइएगा। तो कृष्ण और नारायण के रूप में क्या अंतर है? कृष्ण और नारायण के दोनों के रूप में, इसके बारे में भी कविराज गोस्वामी कहते हैं दोनों का रंग तो सांवला है फिर भी अंतर क्या है?
कृष्ण के निजी रूप में केवल दो भुजाएं होती हैं, किंतु उनके नारायण रूप में चार भुजाएं रहती हैं। भगवान
तो ये सर्वप्रथम अंतर है, भुजाएं। केवल कृष्ण लोक में भगवान की दो भुजाएं होती हैं। कृष्ण लोक छोड़कर सारे आध्यात्मिक जगत में जितने भी लोक हैं उन सब में भगवान की चार भुजाएं होते हैं। केवल कृष्ण लोक में उनकी दो भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम यही अंतर है। जब श्री कृष्ण रासलीला को छोड़कर चले गए थे उस समय गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते इधर उधर जा रही थीं और एक जगह श्री कृष्ण मिल गए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां अभी नजदीक आ गई हैं और अब मैं कहीं छुप नहीं सकता हूं, तो उन्होंने क्या किया, अपना वेश बदल लिया, अपने आप को नारायण बना दिया चतुर्भुज में, और चतुर्भुज रूप में वहां पर खड़े हो गए। और गोपियां वहां पर आईं, उन्होंने पहचाना नहीं कि ये वही श्री कृष्ण है जो वेश बदल कर खड़े हैं, और लेकिन ये तो नारायण है, भगवान है। गोपियां तो कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी, लेकिन नारायण को अवश्य भगवान मानते थे। तो नारायण को भगवान को सामने देखा तो हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, दंडवत किया और कहा कि फिर वहां नारायण भगवान की सेवा करने के लिए रही नहीं। नारायण भगवान से पूछ ले कि कृष्ण कहाँ है, आपने देखा है क्या, जरा बताइए। अरे भगवान जब सामने आए हैं तो भगवान की सेवा करनी चाहिए ना। तो गोपियों के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। गोपियों के मन में विचार था कि नारायण से जानकारी प्राप्त करें कि श्री कृष्ण कहाँ चले गए। तो फिर अपने चतुर भुजों से, अपने हाथों से भगवान ने कोई इशारा किया होगा, ऐसे ऐसे जाओ, तो वो चली गई। बाद में जब राधा रानी आई तो भगवान ने अपना चतुर्भुज वो बनाए रखने में असफल रहे, नहीं रख पाए और दो हाथ उनके पिघल गए। फिर वो स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पुनः प्रकट हो गए। तो ये मुख्य अंतर है। तो नारायण के चतुर्भुज क्यों होते हैं, क्या करते हैं वो चार हाथ लेकर, पढ़िएगा।
भगवान नारायण शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं।
शंख, चक्र, गदा, पद्म। अच्छा, ये चार चीजें जो भगवान धारण करते हैं, इसके ऊपर भगवान के कई नाम भी हैं। बताइए कोई नाम। शंख, चक्र, गदा और पद्म के ऊपर कि ये भगवान इन चीजों को धारण करते हैं, इसके ऊपर कोई नाम बताइए भगवान के। हाँ, गदाधर। गदाधर मतलब जो गदा हाथ में धारण करते हैं। हाँ, चक्रधारी या तो चक्रपाणी, पाणी मतलब वो पीने का पानी नहीं, पाणी न मतलब पाणी मतलब हाथ, जिनके करकमलों में चक्र है, सुदर्शन चक्र, चक्रपाणी या हाँ? पद्मनाभ नहीं, पद्मनाभ मतलब जिनके नाभि से पद्म पुष्प आता है, वो तो गर्भोदक शायी विष्णु हो गए। तो ये ऐसे है गदाधर, चक्रधारी या चक्रपाणी, ये सब भगवान के अलग अलग नाम है, शंखधारी, शंखपाणी आदि। तो भगवान इन चार चीजों को लेकर क्या करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं इन चार चीजों का, कोई बता सकते हैं। इसका वर्णन यहाँ तो नहीं है, फिर भी जब विषय आया है, शंख, चक्र, पदा, गदा और पद्म का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं भगवान। एक मिनट, माइक वहां दीजिएगा।
कृष्ण भक्तों को आनंद देते हैं और दुष्टों को नाश करते हैं।
भक्तों को आनंद देते हैं और दुष्टों को नाश करते हैं, ठीक है। आनंद देते हैं मतलब भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन किन चीजों से?
पद्म और शंख से।
पद्म और शंख से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कोई उदाहरण?
ध्रुव महाराज
को कैसी आशीर्वाद दिया भगवान ने?
शंख
का स्पर्श किया ध्रुव महाराज के सर से, और क्या हो गया?
द्वितीय कल्याण,
ध्रुव महाराज के शरीर में दिव्य शक्ति प्रदान की भगवान ने उस स्पर्श के माध्यम से, और फिर ध्रुव महाराज ऐसे स्तुति बोलने लगे, एक 5 साल का बालक कभी ऐसे नहीं बोल सकता, मानो ऐसे हुआ कि जैसे वो रिकॉर्ड प्लेयर होता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जब ऐसे होता है तो वैसे सुंदर से बजने लगता है, तो ऐसे स्पर्श करने मात्र से ध्रुव महाराज के मुख से बहुत सुंदर स्तुतियां निकलने लगी, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो गई ध्रुव महाराज को। तो अपने शंख से और पद्म पुष्प से भगवान नारायण अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, कृपा बरसाते हैं। और दुष्टों का विनाश कैसे करते हैं? किन दो चीजों से?
गदा और
चक्र
से।
चक्र, तो कोई उदाहरण दीजिए। चक्र से भक्तों की रक्षा की, किसका नाश करके? उस मगरमच्छ का नाश करके। और दुष्ट का विनाश करने का उदाहरण शिशुपाल। और कईयों को कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम किताब में आप देखेंगे कितने सारे असुरों का वध अपने सुदर्शन चक्र मात्र से भगवान ने किया। और उसी प्रकार से गदा, जब गदा धारण करते हैं विशेष रूप से बलराम के रूप में, और भगवान नारायण भी वो गदा का प्रयोग भी करते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो खैर, ये है कृष्ण और नारायण में रूप का अंतर। ठीक है, आगे जरा घुमाइएगा। तो नारायण का वर्णन कविराज गोस्वामी और थोड़ा संक्षेप में करते हैं, पढ़िएगा।
भगवान नारायण परम ऐश्वर्यमय है। श्री भू तथा नीला नामक शक्तियां उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं।
वैकुंठ लोक ऐश्वर्य का लोक है, ऐश्वर्य का जगत है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य जिसकी कल्पना हम सब नहीं कर सकते हैं। और श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा करने के लिए सदैव अनेक शक्तियां तत्पर रहती हैं। उनमें से 3 शक्तियां हैं जिनका वर्णन यहाँ हुआ है, श्री भू और नीला। भू देवी, श्री देवी और नीला देवी, ये 3 देवियां हैं, भगवान की मूर्तिमान शक्तियां हैं जो तरह तरह से भगवान की सेवाएं करती हैं। जब भी भगवान विष्णु या नारायण रहते हैं, जहां भी रहते हैं, तो अवश्य उनके साथ में उनकी शक्तियां रहती हैं। आप जहां भी श्रीमद् भागवत में या किसी अन्य ग्रंथ में भगवान नारायण का वर्णन पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो अवश्य आप ये पाएंगे कि भगवान नारायण के साथ में ये शक्तियां उपस्थित हैं। तो भगवान नारायण की 3 ये कौन सी शक्तियां हैं जो सदैव उनके साथ में रहती हैं बिना देखे हुए? बताइए। श्री भू नीला, ठीक है, हाँ घुमाइएगा। तो भगवान का काम क्या होता है? नीला, नील, नील शक्ति, कभी कभी नीला भी कहते हैं, कि नीला कभी नील भी कहते हैं, नीला भी कहते हैं, श्री भू नीला। श्री केवल लक्ष्मी जी नहीं है, लक्ष्मी जी का नाम अवश्य श्री है, लेकिन ये और भी शक्तियां हैं। आप में से जो और विस्तार में उनको जानना चाहते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए, ठीक है। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, उनके जो संप्रदाय हैं, उनमें लक्ष्मी नारायण की उपासना अधिक होती है, वैकुंठ भाव में वो अपनी भक्ति करते हैं। तो नारायण उनके आराध्य देव हैं, और नारायण के साथ में अवश्य श्री भू और नीला होती हैं। तो इनका वर्णन उन्होंने विस्तार में किया हुआ है। तो अलग अलग वैष्णव आचार्यों से के ग्रंथों से प्रभुपाद जी ने जो इन तत्वों को निकालकर इनका निचोड़ यहाँ तात्पर्य में दिया है। हम इस बार विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि मूल जो चैतन्य चरितामृत का जो धारा है उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। तो आप अवश्य पढ़िएगा तात्पर्य में और आप जानेंगे कि अलग अलग दृष्टि से रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और जीव गोस्वामी ने भी तात्पर्य किया है। एक जगह में ये कहा है कि भौतिक जगत में भी ये तीन शक्तियां हैं जो दुर्गा देवी के विस्तार माने जाते हैं। दूसरी जगह में ये भी कहा गया है कि भगवान के जो तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं, सोचने का, अनुभव करने का और इच्छा करने का, तो ये तीन शक्तियां हैं। उनमें से एक शक्ति कि ये भौतिक और आध्यात्मिक रूप हैं, ये तीन शक्तियां। तो ये आप पढ़िएगा आगे तात्पर्य में, फिर ये स्पष्ट हो जाएगी बात। लेकिन संक्षेप में इस समय जानना काफी है कि भगवान नारायण के साथ ये तीन शक्तियां हैं, श्री, भू और नीला। तो भगवान जब अपने धाम में रहते हैं तो वो क्या करते हैं? क्या ऊब जाते हैं? कुछ काम उनको रहता नहीं क्या? क्या निर्विशेषवादी होते हैं मायावादी लोग? उनके लिए एक बड़ा ये रहस्य होता है कि ये वैष्णव लोग बोलते हैं कि भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं भक्तों के साथ, अरे करते क्या है? क्योंकि उनको केवल भौतिक जगत का अनुभव है कि कोई व्यक्ति लंबे समय अगर रहे तो ऊब जाता है। आजकल तो लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, उनको टेलीविजन चाहिए, सिनेमा चाहिए, पत्रिकाएं चाहिए, ये वो, फिर भी ऊब जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या कर रहे होंगे भगवान, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए नकारते हैं उसके अस्तित्व को ही, वैकुंठ जगत के अस्तित्व को नकारते हैं। लीला की बात तो दूर है, परंतु वहाँ भगवान कभी ऊब नहीं जाते, नहीं उनके भक्त ऊब जाते हैं। वहाँ तो हर क्षण भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, निरंतर, कोई अंत नहीं है भगवान की लीलाओं में। और वास्तव में यही मात्र भगवान का धर्म है, भगवान का जो कार्य है। भगवान केवल एक कार्य करते हैं, वो क्या है? अपनी लीला करते हैं। पढ़िएगा इस बात को।
आध्यात्मिक जगत में लीलाएं करना ही परम भगवान का एकमात्र कार्य है।
जिस प्रकार से एक बहुत अमीर आदमी वो अपने घर में महल में रहता है, उसको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने महल में ऐश करता है बस। कभी यहाँ गया, कभी सैर के लिए गया, कहीं किसके साथ रमण कर रहा है, कभी वहाँ कुछ खेल रहा है, कुछ कर रहा है, किसी दोस्तों के साथ बैठ के कुछ खाना पीना हो रहा है, अपना सारा दिन ऐसे ही वो बिता रहा है। उसे ना तो कोई दफ्तर में जाने की आवश्यकता है, ना कोई दूसरे कार्य करने की आवश्यकता है, केवल एंजॉय करता है, केवल रमण करता है भौतिक जगत में। तो एक साधारण अमीर आदमी दुनिया का भी ऐसे करता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? वास्तव में भगवान का दूसरा कोई काम है ही नहीं, भगवान का काम केवल एक है, और वो क्या है? एंजॉय करना, रमण करना। और इसीलिए वैकुंठ जगत में भगवान का केवल एक कार्य है, लीला करना। भगवान जब ऐसे आनंद लेते हैं तो उसको लीला कहते हैं। हम जब यहां भोग करते हैं तो वो लीला नहीं है, वो हमारे पाप कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। लेकिन भगवान जो भी कार्य करते हैं उसे लीला कहते हैं, और उस कार्य से उनके आनंद की वृद्धि होती है, भक्तों के आनंद की वृद्धि होती है, और निरंतर ये आनंद बढ़ते रहता है लादिनी शक्ति से। तो इस प्रकार से भगवान का एकमात्र कार्य है लीला करना अपने भक्तों के संग में। फिर भी कविराज गोस्वामी एक बात कहते हैं, घुमाइएगा, किंतु, किंतु क्या? हालांकि भगवान का एक ही कार्य है, वो है कि आनंद की लीलाएं करना आध्यात्मिक जगत में। फिर भी आगे पढ़िएगा,
किंतु वे अपनी अहैतुकी की कृपा से पतितात्माओं के लिए एक कार्य करते हैं, वे पतित आत्माओं को चार प्रकार की मुक्ति प्रदान करके उनका उद्धार करते हैं।
हाँ, हालांकि भगवान का कोई इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है, उनको तो बहुत काम है वहाँ आध्यात्मिक जगत में, इतनी लीलाएं कर रहे हैं कि बस 24 घंटे कम है उनके लिए, अनादि काल से कर रहे हैं, अनंत काल तक करते रहेंगे, लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं भगवान की। तो भगवान को वहाँ करने के लिए बहुत कुछ है, आनंद की लीलाएं, लेकिन फिर भी यहाँ जो भौतिक जगत के भीतर जो बद्ध जीव हैं, जो पतित आत्माएं हैं, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं कि अरे अरे बेचारे, ये तो मेरे ही अंश हैं, मुझे भूलकर यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं और बहुत दुख भुगत रहे हैं, बहुत पीड़ा सहन कर रहे हैं, अनादि काल से कर रहे हैं, तो उनका उद्धार मुझे करना चाहिए। तो ये उद्देश्य, ये जो भावना है भगवान के मन में, वो उनको प्रेरित करता है आगे चल के यहाँ अवतार लेने के लिए, इस भौतिक जगत में अंदर आकर इस भौतिक सृष्टि को संभालने के लिए और यहाँ जो बद्ध जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए। जैसे कभी कभी वही अमीर आदमी जिसको दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सोचता है चलो थोड़ा जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाता है, कोई बात से नहीं कर सकता उसको कि जाओ दफ्तर में जाओ। जो कर्मचारी होता है वो तो बाध्य होता है, उसको तो जाना ही पड़ता है, 10 बजे जाओ 6 बजे तक रहो। लेकिन मालिक जो होता है उसको कोई ऐसे बंधन में नहीं डाल सकता। भगवान अगर जाते हैं तो भौतिक जगत में आते हैं तो केवल अपनी वो स्वेच्छा से आते हैं और बद्ध जीवों को के ऊपर उद्धार करने के लिए आते हैं, और कोई कारण नहीं है। तो उद्धार करने का मतलब क्या है कि उनको इस भौतिक जगत से, इस दुख भरे भव सागर से मुक्त कराने के लिए आते हैं, ये उद्धार का मतलब है। तो यहाँ से मुक्त कराते हैं तो क्या करते हैं, उनको एक मुक्ति देते हैं, और चार प्रकार की मुक्तियां हैं ऐसे कविराज गोस्वामी बताते हैं, ये भागवत में भी इस बात की पुष्टि है। तो हालांकि भगवान को कोई समय नहीं है उनको लीलाओं को छोड़कर यहाँ आने के लिए, ना उनको कोई इच्छा है ना समय है, लेकिन फिर भी भगवान कृपा की मूर्ति हैं, कृपा निधि हैं, कृपा के सागर हैं, इसलिए वो भौतिक जगत में बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं और चार प्रकार के मुक्तियां प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन से प्रकार की चार मुक्तियां हैं। मैं हाँ, चार प्रकार की मुक्तियां कौन सी हैं जरा पढ़िएगा।
चार प्रकार की मुक्तियां,
पहले केवल मुक्तियों का नाम पढ़िए, उसके बाद में हर एक का वर्णन पढ़िएगा।
सालोक्य, सामीप्य,
सारष्टि,
सारूप्य,
ये चार प्रकार की मुक्तियां। तो बिना देखे हुए बताइएगा। बहुत अच्छा, और कोई बताइए बिना देखे। सालोक्य, सामीप्य, सारष्टि, सारूप्य, ठीक है। अब इन चारों का वर्णन हम सुनते हैं।
सालोक्य, भगवान के समान पद।
भगवान के समान पद मतलब सलोक, उसी लोक में रहना या उनके समान एक पद को प्राप्त करना, ये है सालोक्य मुक्ति।
सामीप्य, भगवान का निरंतर सानिध्य।
भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना, ये सामीप्य मुक्ति कौन से शब्द से आता है? समीप, समीप मतलब निकट, अर्थात भगवान के बहुत समीप या निकट रहना, अर्थात भगवान के निजी सानिध्य को प्राप्त करना, भगवान के बिल्कुल साथ साथ रहना उनके पार्षद के रूप में, तो ये है सामीप्य मुक्ति।
शास्त्री,
सारष्टि, साक्षी
भगवान के ही बराबर ऐश्वर्य,
सृष्टि से सारष्टि, तो भगवान के समान ऐश्वर्य, ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान तो षडैश्वर्य संपन्न है और हम तो छोटे जीव हैं, तो मुक्ति प्राप्त करने के बाद भला हम कैसे भगवान के समान ऐश्वर्यशाली हो सकते हैं? कैसे संभव है ये? कोई उदाहरण दीजिए इस भौतिक जगत का। माइक दीजिए।
कोई राजा है और उसके कोई निजी कोई राजा होता है तो उसके कोई निजी परिवार वाले या फिर कोई निकट के मंत्री, उनका भी वैसे ही ऐश्वर्य होता है राजा के समान।
तो परिवार और मंत्री की बात तो दूर है, समझिए जो उनके घर में नौकर हैं,
सेवक है,
वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं?
वो भी उसी महल में
रहते हैं,
वैसा ही उनका भी।
अगर कोई राजा के नौकर को पूछे आपका एड्रेस तो बताओ, वो क्या बताएगा? राजमहल, मैं तो राजमहल में रहता हूँ। लेकिन वो राजा नहीं है, फिर भी राजा का नौकर होता है, भले वो बगीचे में काम कर रहा हो या वो कुछ कह रहा हो, लेकिन रहता है राजमहल में। और राजमहल के शान में, ऐश में, वहां के बिल्कुल ठाठ में रहता है, सब कुछ वहां है, आता जाता अंदर है, बाकी कोई प्रजा अंदर नहीं आ सकती, लेकिन वो राजा का नौकर है, इसलिए कभी भी अंदर बाहर आ जा सकता है, वहां रहता है बल्कि। और राजा के रसोई घर में जो बनता है उसे भी मिलता है, वो उसी वातावरण में रहता है जिस वातावरण में राजा रहता है, तो वो भी एक दृष्टि से देखा जाए तो राजा के समान ही हो जाता है। तो उसी दृष्टि से, उसी तरह से जब भगवान की के कोई भक्त सारष्टि मुक्ति प्राप्त करते हैं तो भगवान उनको ऐसे संपत्ति प्रदान करते हैं। भगवान के धाम में जो आते हैं तो उनको भगवान के पास जो भी है वो उनको मिल जाता है। हाँ, आगे पढ़िएगा।
सारूप्य, भगवान जैसा स्वरूप।
वैसे जितने भी वैकुंठ लोक के निवासी हैं अधिकतर उनको भी चतुर्भुज रूप होते हैं, तो भगवान नारायण का भी चतुर्भुज रूप है और उनके जो भक्त हैं उनके भी चतुर्भुज रूप हैं। दिखने में बिल्कुल नारायण के समान ही लगते हैं, केवल अंतर है किस चीज का? दो चीजों का अंतर है केवल। माइक दीजिए यहाँ पे। जो वैकुंठ निवासी हैं, माइक कहाँ है? जो वैकुंठ निवासी हैं, जो बिल्कुल नारायण भगवान के समान लगते हैं, उनमें और भगवान नारायण में अंतर क्या है? कैसे आप भेद कर सकेंगे कि ये नारायण है और ये नहीं है? चालू कीजिए, ऑन कीजिए।
कृष्णा, भगवान के शरीर में कौस्तुभ की मणि रहता है और श्रीवस्त्र की चिन्ह रहता है, जो दूसरी उनके भक्तों के अंदर नहीं होता।
बिल्कुल, केवल नारायण भगवान कौस्तुभ मणि पहनते हैं और श्रीवत्स, श्रीवत्स लक्ष्मी देवी का चिन्ह है। ये दिखने में कैसे है श्रीवत्स, बताइए?
श्रीवस्त्र की चिन्ह होता है पीला कलर के, सही है के।
सफेद रंग का एक बाल होता है,
बाल जैसा होता है,
जो कहाँ होता है?
वक्षस्थल पर होता है,
भगवान के वक्षस्थल पे होता है, क्योंकि वो लक्ष्मी का चिन्ह है। इसका मतलब है कि लक्ष्मी देवी सदैव श्री विष्णु या नारायण के वक्षस्थल पर निवास करती हैं। इसलिए भगवान का और एक नाम है श्रीनिवास। श्रीनिवास का मतलब जो लक्ष्मी देवी के निवास स्थान है। और कौस्तुभ मणि, एक कौस्तुभ मणि भी भगवान धारण करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ वृंदावन में आए 5000 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने भी कौस्तुभ मणि पहने या नहीं? धारण किया। कैसे मिला उनको, किसने दिया? हाँ जी, नहीं, वो तो स्यमंतक मणि। वृंदावन में कौस्तुभ मणि कैसे मिला? भगवान कृष्ण, ये तो लीला है। हालांकि कौस्तुभ मणि हमेशा भगवान के साथ रहती है, फिर भी एक लीला के माध्यम से किसी ने उनको भेंट दिया। बताइए कौस्तुभ मणि कैसे मिली कृष्ण को? जब नारायण के पास है तो कृष्ण के पास भी तो होना ही चाहिए ना। किसने दिया? किसी को नहीं पता। अघासुर? नहीं नहीं। नाग पत्नियों ने, कालिया के पत्नियों ने दिया। जब श्री कृष्ण नृत्य करना नृत्य कर रहे थे कालिया के ऊपर, और कालिया बिल्कुल प्राय मृत्यु के द्वार पे खड़ा था, तो उस समय कालिया की पत्नी जो हैं, पत्नियां जो हैं, वो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के पास आई कृपा याचना करने के लिए कि हमें विधवा मत बनाइए, आपने जो दंड दिया है उसको अभी बहुत है। अरे दंड तो क्या, आपने सबसे बड़ी कृपा इसके ऊपर की है, क्योंकि जिस सौभाग्य की प्राप्ति हुई है हमारे पति को कि आपके चरण कमलों की धूली उनके सर पे प्राप्त हुई है, ये लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिलता। लक्ष्मी देवी को ऐसा करने के लिए अनेक सालों तक तपस्या करना पड़ता है, लेकिन न जाने हमारे पति को ऐसा सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। ये तो सांप की योनि में है, जो कि बहुत नीच योनि माना जाता है, जो पाप योनि माना जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप करता है, बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होता है, तो उसे सांप का जन्म मिलता है। लेकिन इसने बहुत पाप किए होंगे इसलिए सांप का शरीर मिला, लेकिन अभी आपकी इतनी कृपा मिली कैसे, हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारा भेंट दिया, बहुत उपहार दिए। पानी में नीचे गए और कालिए के खजाने में जितने भी मोनिया मणिया रत्न जितने भी थे, धन था, वो आके सब कृष्ण को अर्पण किया। और आचार्य बताते हैं कि इन मणियों में से कौस्तुभ मणि भी था। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान को कौस्तुभ मणि मिल गई और उन्होंने पहन लिया। ये परीक्षा में नहीं पूछेंगे, ये तो एक ऐसे बाय द वे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये अंतर है नारायण में और वैकुंठ लोक के अन्य निवासियों में, श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि। अन्यथा हम नहीं जान पाएंगे, अगर दोनों को सामने खड़े खड़े देखेंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो ये सारूप्य उसी प्रकार का रूप मिलता है। अभी ऐसा नहीं है कि किसी को केवल एक ही मिलना है, एक से भी ज्यादा मिल सकते हैं, चारों के चार मिल सकते हैं। जैसे समझ लीजिए किसी को सारूप्य मिला है, हो सकता है भगवान के बहुत समीप भी आ गया हो, या उसको साष्टी भी मुक्ति मिली हो, चारों चार भी मिल सकते हैं। लेकिन ये चार किनको मिलते हैं, किनको मिलते हैं? ये किसी को मिल जाता है जो भी सड़क में घूम रहा है, या किसको मिलता है? केवल भक्तों को मिलता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं केवल उनको मिलता है। हाँ जी, आगे बढ़िए। इन चार मुक्तियों के अलावा एक पांचवें प्रकार की मुक्ति भी है, जिसको भक्त हरगिज पसंद नहीं करते हैं। इस पांचवें पंचम मुक्ति को भक्त नरक तुल्य समझते हैं, बल्कि नरक से ज्यादा अधम, कैवल्य नरक आयते। ये कैवल्य मुक्ति जो है, सायुज्य मुक्ति, ये नरक से भी नीचे है। तो पढ़िएगा,
पांचवें प्रकार की मुक्ति सायुज्य निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना। भक्तगण इस मुक्ति की इच्छा कभी नहीं करते।
तो सायुज्य मुक्ति, इसे एकत्व भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, ऐसे कई नाम हैं। तो इस मुक्ति का मतलब है कि भगवान के निराकार ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाना, ये सायुज्य मुक्ति कहलाता है। और इसको भक्त बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। भक्त क्यों नहीं पसंद करते हैं इस सायुज्य मुक्ति को? सेवा का अभाव होता है, वहां पर सेवा का अवसर नहीं मिलता। जब भगवान में ही लीन हो जाते हैं तो सेवा कौन करेगा, सेवक कौन है, सेव्य कौन है। इसलिए हनुमान जी भी कहते हैं मुझे ये सहज मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मिल जाएगी तो फिर मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। भक्त नरक में जाने के लिए तैयार है, अगर वहां से भी वो भगवान की सेवा कर पाए तो, अगर भगवान की इच्छा हो कि वो नरक में जाए तो भक्त तैयार होता है, क्योंकि नरक में जाने के बाद भी वो भगवान की सेवा करेगा। परंतु इस प्रकार की मुक्ति भक्त नहीं चाहता कभी भी, क्योंकि यहाँ सेवा नहीं हो सकती। नरक में भी जाके भगवान की सेवा कर सकता है भक्त, परंतु निराकार ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद सेवा की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई संभावना नहीं रहती है। ठीक है, ये घुमाइए। तो ये निराकार ब्रह्म है क्या, ये निर्विशेष ब्रह्म है क्या जिसमें सायुज मुक्ति होती है? तो कविराज गोस्वामी थोड़ा कुछ समझा रहे हैं हमें निर्विशेष ब्रह्म के बारे में, थोड़ा पढ़िएगा।
निर्विशेष ब्रह्म क्या है? यह भगवान कृष्ण के शरीर की परम चमकीली किरणों से बना होता है।
ठीक है, तो भगवान के दिव्य शरीर का तेज प्रकाश ये निर्विशेष ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति इसे कहते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ये निराकार ब्रह्म जो होता है ये भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित होता है। तो फिर से पढ़िएगा।
यह भगवान कृष्ण के शरीर की परम चमकीली किरणों से बना होता है।
किरणें मतलब ये निराकार ब्रह्म क्या चीज है? भगवान से शरीर के शरीर से उत्पन्न होने वाली किरणें हैं, उनके शरीर की कांति उनका तेज है। तो क्या गुण हैं, किस प्रकार से दिखाई पड़ता है, क्या है ये? और यहाँ पढ़िएगा।
यह भौतिक प्रकृति के परे होता है, यह आध्यात्मिक होता है।
क्योंकि ये प्रत्यक्ष साक्षात भगवान के शरीर से उत्पन्न होता है, इसलिए तो भौतिक हो नहीं सकता, ये तो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, भौतिक सृष्टि के परे है। आगे पढ़िए।
किंतु इसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं होती।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, किंतु इसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? कौन किस प्रकार का ब्रह्म? निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष शब्द का मतलब समझाइए आप। निर्विशेष शब्द जिसमें कोई विशेषता नहीं है, वैशिष्ट्य नहीं है। विशेषता मतलब क्या, क्या नहीं है, क्या विशेषता नहीं है? कोई गुण नहीं है, कोई विविधता नहीं है उसमें, वैरायटी नहीं है, कोई गुण नहीं है उसमें, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष। ये केवल एक प्रकाश है, ये एक ज्योति है। ठीक है, घुमाइएगा।
यह ब्रह्म ज्योति सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले एक रस समांग तेज के समान है, किंतु सूर्य के भीतर रथ, घोड़े तथा सूर्य देव के अन्य ऐश्वर्य रहते हैं।
ठीक है, तो अभी निराकार ब्रह्म की तुलना किससे की गई है? सूर्य के किस चीज से? प्रकाश से। जिस प्रकार से सूर्य के किरणों में कोई विविधता नहीं होती है, केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है, परंतु सूर्य के भीतर विविधता होती है। कैसे होती है सूर्य के भीतर विविधता? हालांकि आजकल के वैज्ञानिक कहेंगे कि सूर्य के भीतर कोई विविधता नहीं है, वैरायटी नहीं है। क्यों? वहां तो केवल आग ही आग है, आग के भीतर भले क्या विविधता होती है, परंतु शास्त्रों से हम जानते हैं कि वहां पर भी अनेक लोग निवास करते हैं। उनका शरीर अग्नि से बना हुआ है, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पृथ्वी लोक में निवास कर रहे हैं, तो हमारा शरीर भी पृथ्वी और जल से बना हुआ है। अन्य भी पदार्थ हैं अवश्य, परंतु प्राधान्य तो पृथ्वी और जल का है, थोड़ी अग्नि भी है, आकाश भी है, सब कुछ है। उसी प्रकार से सूर्य लोक में जो निवास करते हैं, वहां भी उनके उपयुक्त शरीर होते हैं। शास्त्र में बताया जाता है कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी लोक हैं, उन सब में कोई न कोई प्राणी निवास करते हैं, मनुष्य निवास करते हैं, परंतु उनके शरीर अलग अलग पदार्थों से बने हुए होते हैं, जैसे कि उस लोक का वातावरण है। जैसे यहाँ पृथ्वी लोक के ऊपर भी मछलियों का शरीर एक प्रकार का होता है, वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं, लेकिन हम जब पानी के भीतर जाते हैं तो क्या हम सांस ले सकते हैं? आपने कोशिश किया है? आप में से कितने भक्त तैरना जानते हैं? पानी के भीतर जाके आप सांस लीजिए, आपने कोशिश की है कभी? क्या होगा? नहीं ले पाएंगे, डूब जाएंगे। तो मछलियां तो सांस लेती है ना, तो भगवान ने उनका शरीर ऐसे बनाया हुआ है कि वो पानी के भीतर भी रह के सांस ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसी प्रकार से केवल हम आसमान में रह सकते हैं? वहां आसमान में रहने के लिए भी एक अमुक प्रकार का शरीर चाहिए, तो भगवान ने पंछियों के लिए उस प्रकार का शरीर बनाया है। हम नहीं रह सकते, केवल एरोप्लेन में आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते, आना तो पड़ेगा नीचे एक दिन। तो उसी प्रकार से जैसे इस पृथ्वी लोक के ऊपर भी अलग अलग वातावरण में अलग अलग पोशाक की आवश्यकता होती है। अनेक योनियों की बात तो दूर है, आप किसी ठंडे स्थान में जाएंगे, हिमालय में जाएंगे तो आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, आप गर्म स्थान में जाएंगे तो आपके कपड़े बदल जाएंगे। तो उसी प्रकार से अलग अलग लोकों में आत्मा को अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं, जो कि उस स्थान के उस लोक से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इस प्रकार से सूर्य लोक में भी सूर्य देव निवास करते हैं। सूर्य देव के भी कई पार्षद हैं, सूर्य लोक के अनेक निवासी हैं जो वहां रहते हैं, और सूर्य देव के अनेक रथ होते हैं, वहां घोड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है वहां। लोग उस सूर्य लोक में तो अनेक शहर भी हैं, कई लोग निवास करते हैं। हमारे वैज्ञानिक इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे आप लोग बकवास कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सूर्य लोक के अंदर भी लोग निवास करते हैं। परंतु वो जानते नहीं है कि अग्नि से बना हुआ उनका शरीर होता है, वो निवास करते हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञान युक्त है, वो जान सकता है कि सूर्य देव के भीतर या सूर्य मंडल के भीतर बहुत विविधता है, लेकिन सूर्य के किरणों में कोई विविधता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आगे घुमाइएगा इसको, ब्रह्म सूर्य प्रकाश के समान है और स्वयं श्री कृष्ण सूर्य जैसे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने बात बतलाई आपको, अपने शब्दों में संक्षेप में आप में से कोई कहिएगा। कौन बतलाएंगे? हाँ जी, अपने शब्दों में बताइए, माइक दीजिए, संक्षेप में बताइए।
सूर्य में प्रकाश होता है और सूर्य के अंदर भी जीवन है, उसमें जो जीवन है, उसमें जो आत्मा है, उसको वही उस हिसाब से कपड़े या उस हिसाब से उनको शरीर मिलता है जो वहाँ के लिए उपयुक्त है। इसमें आपने उदाहरण दिया कि पानी में जैसे मछली रह सकती है, सांस ले सकती है, हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसी तरीके सूर्य में जो जीवन है उसमें सूर्य की ताप के हिसाब से उनको शरीर मिला हुआ है।
आगे बढ़ाइए बात को। तो किस संदर्भ में सूरज और सूरज की किरणों की बात की गई है?
इसलिए कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, उनका प्रकाश जो है वो जो सूर्य का प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति है।
इसका तात्पर्य क्या है कि सूरज की किरणें हैं उनमें क्या नहीं है?
उनमें जीवन नहीं,
नहीं जीवन नहीं, विविधता नहीं,
विविधता नहीं,
विविधता नहीं है। उसी प्रकार से
ब्रह्म ज्योति में विविधता नहीं,
विविधता नहीं है। तो किस चीज में विविधता है?
सूर्य में,
सूर्य में है। तो
कृष्ण में,
कृष्ण में है जो कि सूर्य के समान है। कृष्ण में है मतलब कृष्ण के वैकुंठ लोक में है। इतने सारे वैकुंठ हैं, जगत हैं, लोक हैं, उनमें नारायण निवास करते हैं और उनके अनेक भक्त, सैकड़ों भक्त निवास करते हैं। तो कितनी विविधता है वहां पर। तो कृष्ण भगवान और ब्रह्म ज्योति में वही संबंध है जो कि सूर्य मंडल और सूर्य के किरणों में है। ठीक है, तो ये जो उपमा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कभी कभी ये बताया जाता है कि भगवान के भक्त भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं और जो जिन असुरों का वध भगवान श्री कृष्ण करते हैं वो भी भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। तो ये एक संशय या प्रश्न मन में उत्पन्न हो सकता है कि ये कैसे होगा। अरे जो भक्त लोग प्रेम से सेवा करते हैं भगवान की, वो तपस्या करते हैं, पाप बिल्कुल नहीं करते हैं, पुण्यात्माएं हैं, उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, ये तो ठीक है। परंतु जिन असुरों का वध भगवान करते हैं क्योंकि वो असुर हैं, वो भी उसी धाम को प्राप्त होते हैं। ये तो एक प्रश्न ऐसा है जिसमें संशय उत्पन्न हो सकता है कि क्यों ऐसे होता है। तो इसके जवाब में कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं जरा पढ़िएगा।
जहाँ ये कहा गया है कि भगवान के शत्रु तथा भक्त एक ही गति प्राप्त करते हैं, वहाँ इसका आशय यह है कि ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण अंततः एक ही है।
अंततः एक ही हैं कृष्ण और ब्रह्म, इसका मतलब क्या है? किस चीज में एक है? ब्रह्म ज्योति और भगवान कृष्ण में अंतर नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि हम फिर कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हैं? हम तो निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे। क्या ये निर्णय हो सकता है, निष्कर्ष हो सकता है? ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तत्व में कृष्ण और ब्रह्म ज्योति में कोई अंतर नहीं है। गुण में, तत्व में, तत्व क्या है? आध्यात्मिक। ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक है, कृष्ण भगवान भी पूर्ण आध्यात्मिक है, तो दोनों आध्यात्मिक है। और ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है उस प्रकार से कि सूर्य के किरण सूर्य से अलग नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं देखो यहाँ सूरज है, देखिए यहाँ आंगन में सूरज दिखाई पड़ रहा है आपको, सूर्य है ना ये। तो अगर कोई कहेंगे कि यहाँ तो सूरज है तो हाँ ठीक है, परंतु क्या सूर्य मंडल यहाँ है? नहीं, तो क्या है? सूर्य के किरणें यहाँ पर है। तो क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से आती हैं और सूर्य के किरणों के बिना सूर्य का कोई मतलब नहीं है, और सूर्य की किरणें ब्रह्म सूर्य से इस दृष्टि से एक ही हैं, अभिन्न हैं, इसलिए जब हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ सूर्य है तो ये गलत नहीं है। फिर भी हमें जानना चाहिए कि ये सूर्य की किरणें सब कुछ नहीं है, ये सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से आती है और सूर्य मंडल जो है सूर्य की किरणों के उद्गम है, और इसलिए सूर्य मंडल सूर्य किरणों से श्रेष्ठ है क्योंकि वो सूर्य की किरणों के उद्गम है। सूर्य के किरणें सूर्य मंडल के ऊपर आधारित होते हैं, तो एक दृष्टि से दोनों एक समान है, लेकिन और एक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य मंडल श्रेष्ठ कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण और उनके ब्रह्म ज्योति में तत्वतः एक हैं दोनों, फिर भी अंतर यह है कि श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म के उद्गम हैं। तो जब ये कहा जाता है कि भक्त और असुर जो कि कृष्ण के कर कमलों द्वारा मारे गए हैं वो दोनों भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो दोनों का तत्व एक है, इसलिए वो हम कहते हैं कि दोनों भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी एक बहुत आसान और सुंदर उदाहरण देते हैं। आप में से जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी हो आप बताइए इसके लिए कौन सी उपमा या दृष्टांत श्रील रूप गोस्वामी देते हैं, कोई बता सकते हैं? सागर नहीं, ये बतलाने के लिए कि जो जिन असुरों का वध भगवान करते हैं वो भी भगवान के धाम को पहुंचते हैं, और जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो इन दोनों में भिन्नता और अभिन्नता का स्पष्टीकरण करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक उपमा देते हैं। तो कौन सी वो उपमा है बताइए, कौन सा उदाहरण देते हैं इसके लिए? हाँ, और एक राज्य और राजमहल। अच्छा, अभी आपको हिंट दे दिया हमने, अभी आप अंतर बताइए, राज्य और राजमहल। अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए इस हिंट के आधार पर। हाँ, माइक दीजिए।
तो दोनों, जैसे एक व्यक्ति राजमहल में जाता है और एक व्यक्ति केवल राज्य में जाता है, राजमहल के बाहर, ये हम दोनों को कहते हैं कि दोनों ही राज्य गए हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक तो ऐसे ही राज्य में बाहर है, मान लीजिए सड़क में है, लेकिन दूसरा राजमहल के अंदर गए हैं, तो वही अंतर है।
इसका मतलब है कि जो व्यक्ति राजमहल में गया है
वो राज्य,
और जो व्यक्ति राजमहल के बाहर रह रहा है कोई धर्मशाला में, दोनों ही राज्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो राज्य के बाहर की दृष्टि से, किसी दूसरे देश की दृष्टि से देखा, दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों कहाँ गए?
राज्य
में गए। लेकिन राज्य के अंदर जाने के बाद किसकी गति क्या हुई? एक व्यक्ति गया राजमहल और दूसरा व्यक्ति गया कोई धर्मशाला में, है ना? तो अंतर हुआ ना। जैसे मान लीजिए कोई बम्बई से दिल्ली जा रहा है, दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक ही रेलगाड़ी में बैठे हैं, दोनों बम्बई की दृष्टि से देखा जाए, बम्बई में उन दोनों आदमियों को कोई पूछे, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी दिल्ली जा रहे हैं। तो दोनों दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद ये आदमी ताजमहल होटल में जाके रुकेगा, हर रोज 20,000 रुपया दिन का कमरा, और दूसरा आदमी हमारे जैसा हो वो धर्मशाला में जाके रहेगा। दोनों जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद स्थान का भेद होता है, गति का भेद होता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से अब बात को आगे बढ़ाइए।
तो उसी तरह जो जैसे यहाँ पे बताए गए जो राक्षस होते हैं वो भी जाते हैं आध्यात्मिक जगत, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भी आध्यात्मिक जगत जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होने के बाद वो धाम में जाते हैं भगवान के, और जो अन्य हैं वो केवल ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित रहते हैं।
और स्पष्ट कीजिए, इस भौतिक जगत से जो परे जाते हैं, भौतिक जगत के परे क्या है?
दोनों ही भौतिक जगत के परे गए, आध्यात्मिक जगत है। तो
आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत के परे है। तो एक बार कोई यहाँ से मुक्त हो गया, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गया, भौतिक जगत के पार हो गया, कहाँ पहुँच गया?
आध्यात्मिक
जगत। अब आध्यात्मिक जगत में भक्त एक ओर और असुर जिनका वध भगवान ने किया है दूसरी ओर, इन दोनों की गति कहाँ कहाँ हुई?
हरे कृष्णा,
माइक माइक।
हरे कृष्णा, जब भक्त मुक्ति प्राप्त करता है भगवान की प्रेमा भक्ति द्वारा, भगवान की निजी सेवा में लगता है।
कहाँ?
भगवान की निजी सेवा में, भगवान की सेवा में वो लगे।
कहाँ?
भगवान के धाम में।
धाम में मतलब क्या?
भगवान के धाम में वैकुंठ जगत में गोलक वृंदावन भगवान के नित्य परिकर रूप में भगवान के।
हमने आपको बताया था भगवान का धाम के तीन भाग हैं। कौन से तीन भाग हैं भगवान के धाम के? वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक, ब्रह्म ज्योति। तो ये सब वैकुंठ जगत है। तो भगवान के भक्त कहाँ जाते हैं इन तीन स्थानों भागों में?
वैकुंठ जगत में जाकर के, गोलक में जाकर के भगवान की सेवा में।
केवल गोलक में? अगर विष्णु के भक्त हैं तो वैकुंठ में
भगवान के।
तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो भगवान की कृपा से या तो वो वैकुंठ लोकों में, किसी भी एक वैकुंठ लोक में जाते हैं, या तो कृष्ण लोक में जाते हैं। परंतु जो असुर हैं, जिनका वध भगवान ने किया है, वो कहाँ जाते हैं?
वो भगवान यह बहुत से संसार से मुक्त होकर के ब्रह्म ज्योति में
लीन हो जाते हैं। लेकिन भौतिक जगत की दृष्टि से देखा जाए
दोनों मुक्त है,
तो दोनों भगवान के धाम में चले गए हैं। लेकिन भगवान के धाम के अंदर जाने के बाद दोनों की गति में बहुत फर्क है ना? जैसे ताजमहल होटल वाला है और धर्मशाला वाला है। दोनों गए दिल्ली, लेकिन दिल्ली के अंदर गति अलग अलग हुई। ठीक है। अच्छा, आप में से और कोई एक इस बात को फिर से स्पष्ट कीजिए, ताकि हम समझ जाएं कि सभी भक्त इस बात को भली भांति समझ गए हैं। हाँ जी, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, माइक दीजिए यहाँ पर।
हरे कृष्णा। जैसे मैं अभी हरियाणा से आया हूँ और यूपी में आया हूँ, तो यूपी में तो मैं आ गया, पर यूपी में मैं वृंदावन में आया हूँ या यूपी में किसी और निम्न स्थान में रहा हूँ, इससे भी फर्क समझा जा सकता है कि हम गोलोक में गए हैं, वैकुंठ लोक में, या गोलोक में गए हैं कृष्ण लोक में, या फिर हम ब्रह्म ज्योति में लीन हुए हैं। इससे भी चीज क्लियर होती है कि जो असुर लोग हैं वो यूपी के किसी और पार्ट में गए हैं, और जो भक्त लोग हैं वो वृंदावन में आए हैं।
अब ऐसा मत बोलिए, कोई हमें निंदा कर रहा है कि आप बोल रहे हैं कि हम वृंदावन के बाहर रहते तो हम असुर हैं। लेकिन हाँ, अच्छा ये बताइए, सारे असुर लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं? अरे असुरों को तो नरक में जाना चाहिए।
अगर भगवान ने उनका वध किया है,
हाँ ये
तो,
बात है।
फिर तो वो
सारे असुर नहीं जाते, केवल जिनका वध भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है
वो ब्रह्म ज्योति,
वही मात्र भगवान की कृपा से ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। ठीक है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो भी भगवान के धाम में गए, और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वो जब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? लोक में, वैकुंठ लोकों में कहीं जाते हैं, और भगवान के सानिध्य में रह के शाश्वत रूप से भगवान की लीला में शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में। ठीक है, घुमाइएगा। हाँ जी, तो अभी कौन लोग, कौन से जीव हैं जो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं असुरों के अलावा? और बताइए, पढ़िएगा।
जो लोग निर्विवेश ब्रह्म तेज की उपासना करने में पूर्ण हो गए हैं, वे ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। भगवान के द्वारा मारे गए असुर भी उसी लोक को प्राप्त होते हैं।
फिर से पढ़िए।
जो लोग निर्विवेश ब्रह्म तेज की
निर्विशेष
ब्रह्म तेज की उपासना करने में पूर्ण हो गए हैं, वे ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। भगवान के द्वारा मारे गए असुर भी उसी लोक को प्राप्त होते हैं।
अच्छा, तो अभी बताइए कौन ब्रह्म ज्योति में लीन होने में सफल हो जाते हैं?
जो
ज्ञान मार्ग में जाने वाले, जो निराकार ब्रह्म की उपासक होते हैं, अगर वो अपने पथ में सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करते हैं तो वो जाकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अथवा और कौन जा सकते हैं?
जिसको भगवान ने, जिनका वध किया है वो जा सकते हैं।
जिनका वध भगवान ने किया है वो जा सकते हैं। तो देखिए,
हाँ,
इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका?
वो असुर हैं।
अरे हमने तो ऐसा नहीं कहा।
हरे कृष्ण। इसका मतलब तो यही सामने आ रहा है।
इतना ही है कि दोनों की गति एक है, तो हमें तो निराकार ब्रह्म की उपासना में कोई रुचि नहीं, हमें तो निराकार ब्रह्म के जो उद्गम है श्री कृष्ण, उनसे हमारा संबंध है। केवल प्रकाश से, ज्योति से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। तो वैकुंठ लोकों में कौन जा सकता है? हाँ पढ़िएगा।
लेकिन केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं।
वैकुंठ धाम मतलब यहाँ वैकुंठ लोक होना चाहिए। हाँ? केवल वैकुंठ धाम नहीं, वैकुंठ लोक। हमें समझ लेना चाहिए कि जब हम वैकुंठ धाम कहते हैं तो ज्यादातर हम लोक की ही बात करते हैं। केवल भक्त लोग राजमहल में जा सकते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं और जो असुर हैं जिनका वध भगवान ने किया है, वो राज में अवश्य प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर सड़क में जाते हैं, राजमहल के अंदर नहीं जा सकते। तो ठीक है, ये बात स्पष्ट है सबके लिए। आप अभी जहां भी जाएंगे, वापस जिनके पास भी जाएंगे, उनको ये बात समझाइएगा। याद रखिए, किसी चीज को अच्छी तरह से समझना है और याद रखना है तो दूसरों को हमें सिखाना चाहिए। जैसे हम इस चीज को दूसरों को दोहराएंगे, सिखाएंगे, तो फिर हमें याद रह जाएगा अच्छी तरह से। तो अपने अपने आश्रम में जाके या घर में जाके जिनको आप मिलेंगे उनको पकड़िए, बिठाइए और बोलिए कि देखो ये है राजमहल और राज्य। ठीक है। हाँ जी, माइक दीजिए।
हरे कृष्णा, हमारा एक प्रश्न है छोटा से।
हाँ।
हमें अभी दो चीज चर्चा किया गया है कि वैकुंठ लोक है और भगवान कृष्ण के लोक है। कृष्ण के लोक में भगवान दो भुजधारी रहते हैं, वैकुंठ में भगवान चार भुजधारी रहते हैं। भगवान राम के कौन सा लोक में रहते हैं? इसमें तो उनके भगवान राम की दो भुजे हैं, वैकुंठ लोक माना जाएगा न कृष्ण लोक माना जाएगा?
वैसे अयोध्या भी कृष्ण लोक का एक गोपनीय, एक गोपनीय नहीं, एक भाग है अयोध्या। ये भी द्वारका की तरह ही है। राम बहुत विशेष रूप है भगवान के, वो अन्य अवतारों की तरह नहीं है। इसलिए ये प्रश्न हमने भी एक बार किया था कई साल पहले, और एक गौड़ी वैष्णव सन्यासी थे, इस्कॉन के नहीं है, लेकिन उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये भी कृष्ण लोक से मिलजुल कर है। जिस प्रकार से एक किताब में उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि एक किताब में कभी कभी अपेंडिक्स होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं अपेंडिक्स को? हाँ, पुस्तक के अंत में कोई विशेष विषय के ऊपर कोई ज्यादा अधिक चर्चा की जाती है। हाँ, परिशिष्ट होता है अंत में, किताब के अंत में एक परिशिष्ट होता है, तो वो किताब का भाग है भी और नहीं भी। उसी प्रकार से अयोध्या भी कृष्ण लोक का एक ऐसा हिस्सा है, इस प्रकार से ऐसे उन्होंने समझाया था। ठीक है। हाँ,
हरे कृष्ण गुरुजी।
हरे कृष्ण।
जैसे आपने बताया कि असुर और भगवान के भक्तों में दोनों को ही आध्यात्मिक जगत, जब असुर का वध करते हैं भगवान तो उनको भी आध्यात्मिक जगत मिलता है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। भगवान के भक्त जो हैं वैकुंठ लोक को, अलग अलग लोग कृष्ण लोक के वैकुंठ लोक है, वो लोग वृंदावन में जाते हैं। जैसे हम भागवत गीता में देखते हैं जय और विजय को, जो भगवान कृष्ण गलती करने पे सनक सनातन उनका अवतार होता है और वो वध करते हैं, तो जय और विजय जो थे वो भगवान के निजी सेवक थे, सेवक थे, तो क्या उनको भी ब्रह्म ज्योति में लीन होना पड़ा बाद में, या वो फिर वैकुंठ लोक में वापस गए?
वो तो केवल थोड़े समय के लिए भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आए, और तीन जन्म जब उनके हो गए तो वापस चले गए। थोड़े समय के लिए, थोड़े क्षणों के लिए उनके स्थान खाली हो गए, किसी दूसरे ने वहाँ उनकी सेवा की। जैसे कभी कभी ये हम भक्त अपनी सेवा छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं, कोई दूसरे काम से, मंदिर के काम से, तो उनकी सेवा यहाँ किसी दूसरे को करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से जय विजय भगवान की इच्छा से यहाँ पर आए, ये लीला हो गई, तीन जन्म हो गए, वापस चले गए अपने स्थान में।
उनका उनको उनको योनि तो असुर की मिली थी ना, और हम यहाँ हमें स्पष्ट होता है जो असुर के होते हैं वो उनको भगवान जब उनका वध करते हैं तो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं।
हाँ, लेकिन ये उनके साथ ऐसे नहीं हो सकता है और हुआ नहीं, क्योंकि वो तो वापस अपने दिव्य स्थान में चले गए वैकुंठ के द्वारपाल के रूप में। हालांकि साधारणतः ही ये सत्य है कि जिन असुरों का वध कृष्ण भगवान करते हैं वो तो निराकार में लीन हो जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता है। जय विजय की बात तो दूर है, पूतना का वध भी भगवान ने किया, लेकिन पूतना को किस प्रकार की मुक्ति मिली? सायुज मुक्ति नहीं मिली, उनको एक धात्री का शरीर गोलोक वृंदावन में मिल गया। तो भगवान जी अगर विशेष कृपा करते हैं तो जिस असुर का वध करते हैं उनको भक्तों की मुक्ति भी दिला सकते हैं अगर भगवान चाहे तो। लेकिन साधारणतः नियम तो ये है कि असुरों का वध करने के बाद वो निराकार ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी अध्याय के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अद्भुत बात बताते हैं। जब आपने प्रश्न पूछा है तो ये भी हम कह दें, और वो कहते हैं कि जब भी रावण हिरण्याक्ष आदि यहाँ आते हैं, शिशुपाल आदि, ये जरूरी नहीं है कि हर ब्रह्मा जी के दिवस में जब कृष्ण आते हैं कि ये तीन जय विजय से आए। केवल इस बार ऐसे हुआ कि जय विजय यहाँ आए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, फिर आगे चल के रावण कुंभकर्ण बने, फिर शिशुपाल दंतवक्र बने, और फिर वापस जय विजय के स्थान में चले गए। ये इस ब्रह्मा जी के एक दिवस की बात हो रही है जिसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के कितने सारे ऐसे दिवस हो चुके हैं, और हर बार कोई रावण होता है, हिरण्यकश्यप होता है, कुछ न कुछ ऐसे होता है। तो ऐसे आवश्यक नहीं है कि जय विजय हर बार यहाँ पर आते हैं। कई बार ऐसे होता है कि यहाँ के ही असुर, यहाँ भौतिक जगत के पाले पोसे हुए असुर जो है बड़े होकर भगवान से युद्ध करते हैं। जब ऐसे कोई योग्य असुर नहीं मिलते हैं भगवान को, तब वो अपने पार्षदों को भेजते हैं कि भाई और युद्ध करने के लिए कोई है नहीं तो तुम ही जाओ चलो। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार से एक राजा कभी अपने एक पहलवान को अपने नौकरी में रखता है कि भाई मुझे थोड़ा कुश्ती करना है, कुछ मल युद्ध, चलो मेरे साथ कुश्ती करो, तो उसके साथ वो कुछ कुश्ती उसी कर लेता है, थोड़ी उसकी कसरत हो जाती है तो राजा भी संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण।
तो उस तरह नीलाचल धाम के, जैसे अभी अयोध्या धाम के बारे में चर्चा की, तो ऐसे नीलाचल धाम भी कोई
नीलाचल भी वैसे ही है,
उसमें भी महाप्रभु रहते हैं।
वो नवद्वीप है, नवद्वीप ही है,
नहीं सन्यासी रूप में से यहाँ महाप्रभु?
सन्यासी रूप में नहीं, वो श्री क्षेत्र है। चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य लीला में नवद्वीप के रूप में है, लंबे बालों से, सन्यासी रूप में नहीं, और वहाँ नित्य रूप से संकीर्तन चलते रहता है। वो भी कृष्ण लोक का एक क्या परिशिष्ट कहते हैं ना, परिशिष्ट है। जैसे अयोध्या है, श्री क्षेत्र है। ठीक है,
तो वहाँ उनके सारे पार्षद होते हैं, जैसे हम देखते हैं स्वस्थ गोस्वामी या जितने भी उनके लीला में जो जिन्होंने भाग लिया श्री कृष्ण चैतन्य लीला में, सारे पार्षद वहाँ होते हैं, लीला में भाग लेते हैं। वैसे ही
जैसे नवद्वीप में होता है प्राय, वैसे देखा जाता है नित्य रूप से वहाँ उनके पार्षद रहते हैं। जहाँ जैसे कृष्ण लीला में यहाँ है वैसे वहाँ भी।
जो आपने कहा कि चतुर्व्यूह मथुरा और द्वारका में रहते हैं, तो मथुरा में अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भी रहते हैं?
हाँ अवश्य, मथुरा वो तो विशेष करके द्वारका में रहते हैं, क्योंकि वहाँ फिर श्री कृष्ण के पुत्र होते हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र है अनिरुद्ध। वैसे श्री कृष्ण के एक पुत्र भी हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध। उनके कितने पुत्र थे श्री कृष्ण के?
1,00,000
161,800 ऐसा कुछ है ना, 16,108 को आप 10 गुना कीजिए, उतने पुत्र। उनमें से एक प्रद्युम्न थे, एक अनिरुद्ध थे, और प्रद्युम्न के एक पुत्र का नाम भी अनिरुद्ध है। तो द्वारका में ये चारों पाए जाते हैं, कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, संकर्षण हैं, अनिरुद्ध हैं और प्रद्युम्न हैं। ये चारों द्वारका में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ काफी लेट हो गया, अभी आप सबको भूख भी लगी होगी। ठीक है, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।